लेकिन बाबा ने हम सभी को ही इतना योग्य बनाया है। इसलिए सबसे पहले तो हमें डेविड भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा म्यूजिक बजाया और हमें योग में कितनी अच्छी मदद की, तो उनके लिए तालियां बजा दो। बाकी आप सुबह से शाम तक बाबा के गोदी में बैठ के, यहां बैठ के जो बाबा के साथ मिलन का जो अनुभव होता है, एक विशेष अनुभव होता है। सबसे पहले अपने आप के लिए, खुद के लिए थोड़ा जोर से तालियां बजा दो। और दूसरा, हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि संसार में क्या परिस्थितियां चल रही है और ऐसी परिस्थितियों में भी बाबा ने आपको यहां बुलाया और उसके निमित्त बाबा तो है ही, लेकिन हमारी आदरणीय दीदी जी है, उसके लिए भी थोड़ा तालियां बजा दो। और सबसे बड़ी बात है, एक अमेरिका में रिसर्च किया गया कि अगर ये जो शरीर है, हमारा हेल्दी शरीर है, इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि हमारे शरीर मतलब हाथ पैर नाक कान ये सब का अगर कीमत की जाए तो इसकी कीमत लगभग 225 करोड़ होती है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी गाड़ी बाबा ने हमें दी है और उस गाड़ी के द्वारा हम परमात्मा की याद करते हैं, बाबा के घर आते हैं, इन आंखों से इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां करते हैं। इसलिए खुद के लिए धन्यवाद दो और शाबाशी भी दो थोड़ा सा, क्योंकि कितने हम भाग्यशाली है जो हम शाबाशी लायक है। तो जैसे रुपेश भाई जी ने कहा कि अनुभव तो बाबा के बहुत है, लेकिन आज हम आपको एक विशेष अनुभव, वैसे बाबा भी बाबा ही है जो आज हमें यहां बैठने के लायक रखा। क्योंकि मुझे याद है कि 2007 दिसंबर यार रामदेव बाबा आए थे इसके नीचे जो मेडिटेशन हॉल है वहां, और ऐसे सामने आके बैठे और जानकी दादी जी योग करा रहे थे। जो योग पूरा हुआ 4:45 बजे हो गया, उसके बाद रामदेव बाबा खुद स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो, क्योंकि आप इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी सुगंध है यहाँ, ज्ञान योग और हवा भी यहाँ इतनी अच्छी है, तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट प्राणायाम और थोड़ा एक्सरसाइज करो। तो उन्होंने खुद सिखाया हम सभी को, जो भी ज्ञान सरोवर निवासी और सेवाधारी उस समय थे, तो सिखाया। फिर उसके बाद हम शुरुआत किया, करीब करीब 2 मास अच्छी तरह से 20 मिनट रोज प्राणायाम करते थे हम, जैसे उन्होंने सिखाया। 2 मास के बाद मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे पेट में कुछ है करके, क्योंकि जब मैं प्राणायाम कर रहा था तो जो गांठ थी कैंसर की गांठ वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, लेकिन वो हार्ड होती जा रही थी, तो ऐसे पेट मतलब हाथ को लग रहे थे कुछ तो है करके। तो शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नाभि खिसक गई है, तो कुछ एक्सपर्ट लोग थे उनको दिखाया भी, तो वो नाभि सेट नहीं हो रही थी, तो तो हम सोचा कि फिर हमारे एक सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि जाओ हॉस्पिटल में एक बार दिखा दो। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तो एकदम हैरान हो गए। उन्होंने कहा सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी हुई तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी गांठ है ये पेट के अंदर आपके। तो दूसरे ही दिन यहाँ अशोक मेहता, डॉक्टर अशोक मेहता जी कुछ काम से आए थे, तो हमारे पास आते ही थे भोजन आदि करने के लिए। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे, तो संडे का दिन था, मैं गया उनके पास। तो उन्होंने एक जगह बोला लेट जाओ इधर देखता हूँ, तो वही देखा। तो उन्होंने कहा तुम बॉम्बे चलो। तो दूसरे दिन बाबा का प्रोग्राम था, रात को ही ट्रेन में बैठ के बॉम्बे पहुंच गए। बायोप्सी हुई, बायोप्सी कर जब रिपोर्ट आया तो हम रिपोर्ट लेके जा रहे थे लिफ्ट से, छठवें मंजिल पे जा रहे थे हमारा बीएसएस हॉस्पिटल। तो हमारे जो साथ में भतीजा था उसने बताया कि आपका रिपोर्ट है पॉजिटिव आया है। तो मैं उसको बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव ही तो होना चाहिए, हमें पता ही नहीं कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता। तो उन्होंने कहा तो पॉजिटिव तो होना चाहिए। तो उसने मुझे समझाया कि पॉजिटिव मना आपको कैंसर है, तो जस्ट 30 सेकंड के लिए तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम कुछ व्यसन नहीं, बाबा के घर में पले बड़े सब कुछ तो हमें मिला है, तो कैसे हो सकता है ऐसे। तो 30 सेकंड के लिए तो एकदम जैसे हिल गया अंदर से, और लिफ्ट चल रही थी, हम फ्लोर पे पहुंचे और बस बाबा के साथ बात करना शुरू किया। बाबा को कहा कि बाबा अगर कैंसर है हा? तो मुझे तो कुछ करना नहीं, जो कुछ करना है आपको ही करना है, मुझे तो कुछ करना नहीं। बाबा को कहा कि अगर आपको लगता है कि अभी मेरी यहां सेवा पूरी होगी तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, और आपको लगता है कि अगर यहां और सेवा है तो आपको ढंग से रखना चाहिए हमें, ताकि मैं सेवा कर सकूं। और बस बाबा के ऊपर ये बात छोड़ दिया, कमरे में पहुंच गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मन के अंदर जो थी चीज डर, वो वही खत्म कर दिया हमने, क्योंकि बाबा के साथ बात किया, रोहरियान किया। फिर एक संकल्प आया कि जब हम इतने बचपन से मेडिटेशन औरों को अनुभव करना, दूसरों को ज्ञान सुनाना, ऐसी परिस्थिति तो ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो अभी पेपर आया है प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल पेपर आया है, तो अभी पता चलेगा कि तुम्हारी अवस्था कैसी है ना। दूसरों को कहना तो बहुत सहज होता है ना, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर आया है तो अभी पता चल जाएगा। तो ये रोहरियान करते करते सो गए। दूसरे दिन फिर वो कीमोथेरेपी शुरू हो गई। तो पहले कीमो हो गया तो ऐसा लगा ये तो कुछ भी नहीं, वो सलाइन लगाते उसके अंदर वो दवाई जाती शरीर के अंदर, कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरी कीमोथेरेपी हुई तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये तो बहुत डराते ऐसे फालतू कुछ भी ऐसा अंदर अंदर लग रहा था। लेकिन जब तीसरी कीमो शुरू हो गई और उसके बाद देखा ऐसे थोड़ा खुजली आने लगी, तो ऐसे देखा तो ऐसे बाली गुच्छे ही बाहर उठ के आ गया। मैंने कहा अभी असर शुरू हो गया। तो उसी पीरियड में मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि देखो ये तुम्हारे ऊपर पेपर है, तो तुम्हें इसको पार करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इसको परिवार में फैलाऊंगा नहीं, बात दूसरों को बताऊंगा नहीं करके, क्योंकि अगर परिवार में बात फैल जाएगी तो उनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगी, और वो तकलीफ फिर मेरे पास आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने कहा कि डॉक्टर को पता है, मुझे पता है ना, और मेरे साथ जो भाई है उनको पता है, तो बस औरों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं। तो करीब करीब चार कीमो हुए, तब तक किसी को पता ही नहीं चलने दिया। फिर जब हम मधुबन आए, क्योंकि किस दिन के बाद एक कीमो होता है ऐसे ऐसे, मधुबन आए तो यहाँ ज्ञान सरोवर में सबको पता चल गया, अरे इसे ऐसा हुआ है करके। लेकिन मैं अपनी अवस्था एकदम हल्की फुल्की और हंसते खेलते, तो इलाज चल रहा है, बाकी सब ठीक है ऐसा कोई। लेकिन यहाँ जब एनसीओ की मीटिंग थी और सारे देश विदेश के लोग आए थे, हम यहाँ हाजिर नहीं थे, तो एक दिन जयंती बहन को पता चला, तो जयंती बहन सीधा रूम में पहुंच गई, तो उन्होंने कहा कि मधुबन आए और सुभाष नहीं मिले, तो ऐसा लगता है हमारी यात्रा अधूरी होगी। तो अंदर ही अंदर मुझे महसूस होगा कि बाबा ने हमें कितने महान बनाया है, कितना श्रेष्ठ बनाया। एक सेवा एक निमित्त बनती है तो हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। तो जब मैं फिर दूसरी केमो के लिए जाना था, तो मैं जानकी दादी के पास गया मिलने के लिए, तो जानकी दादी के पास गया तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुलजार दादी के पास ले गई। और गुलजार दादी को जानकी दादी बताती है कि देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया। तो गुलजार दादी ने बहुत हल्के रूप में, कुछ नहीं, ये तो छोटा सा पेपर है ना, ये पास कर देगा। तो जैसे कि जैसे वरदान मिल गया मुझे कि ये पास कर देगा करके, तो अंदर ही अंदर जैसे कॉन्फिडेंस और जागृत हो गया। और वैसे भी मैंने स्वीकार कर दिया था कैंसर हो गया, और मुझे उसको हंसते खेलते, उसको जैसे भी अगर शरीर भी छूट जाए तो हंसते हंसते छोड़ना है, तो इसलिए वो टेंशन, मरने का टेंशन तो नहीं था। तो इस प्रकार से गाड़ियां आगे बढ़ती गई, फिर हॉस्पिटल जाना आना ये चलता रहा। कई बार ऐसे हुआ कि कभी डायरिया होता था, तो एक बार इतना डायरिया हो गया तो जैसे हॉस्पिटल में गए वहीं बेहोश हो गए। फिर दूसरे डॉक्टर मेहता जी आए, पता चला तो दूसरे दिन होश आया। मतलब ऐसे ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि अब मुझे क्या करना है, ये परिस्थिति तो बहुत बड़ी है और कुछ काम तो करना ही नहीं, मुझे तो अपना कुछ काम तो था ही नहीं, लेटना और बस। तो मैंने अपनी दिनचर्या बनाई कि मेरा जो भी पेंडिंग काम है वो मुझे पूरा करना है। तो क्योंकि जब ज्ञान सरोवर शुरू हुआ, पहले साल ही करीब करीब 13 कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसे चालू ही रहता था इतने 25 साल मतलब जब से। तो मैंने कहा कि अभी जो जो मैंने सोचा था जो काम वो मुझे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे जगदीश भाई जी ने जो किताबें लिखी थी वो मैंने पढ़ी नहीं थी सारी, तो मैंने कहा ये मुझे पढ़ना है। फिर कुछ अव्यक्तवाणियां जो बाबा की है वो पढ़नी है। फिर जो बाबा के मुरली जो चलती है अव्यक्त मुरलिया, वो मुझे वीडियो देखने। तो मैंने अपनी पूरी दिनचर्या बनाई, और जितना, क्योंकि ज्यादा भी नहीं कर सकते थे, ज्यादा भी पढ़ नहीं सकते थे, तो जितना टाइम मिलता था वो करते थे। और जब कुछ नहीं कर सकते थे तो हमें एक बार जगदीश भाई जी ने, सूरज भाई जी ने हमें बताया था ड्रिल कैसी करने की, यहां से आत्मा निकल रही, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, बाबा को मिल रहे, फिर वापिस आ रहे, फिर वापिस जा रहे, फिर आ रहे, ऐसे करते रहो। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी तो कुछ काम तो है नहीं। तो लेटे लेटे मैं ये काम करता था कि यहां से शरीर से आत्मा धीरे 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 परम धाम जा रहे, बाबा को टच कर रहे, वापिस आ रहे। और दूसरा एक अभ्यास करता था, आप लोग भी वो अभ्यास कर सकते, किसी भी बीमारी में काम आता है वो, ये अभ्यास है कि शिव बाबा मेरे बहुत नजदीक है, यहां है, और वहां से मेरे पर पूरा लाइट आ रही है, बाबा की लाइट आ रही है ब्लू लाइट की, और पूरे यहां से धीरे 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 पूरा शरीर में क्रॉस होते, पूरा शरीर ब्लू वायलेट हो रहा है, और पूरे शरीर के अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी है वो भस्म हो रही है। तो ऐसे मैंने अनुभव करता गया, तो मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला। जब मैं बहुत शरीर के अंदर दर्द होता था तो ये अभ्यास करता था, मैं ऐसे लेटे लेटे, तो इतना डीप साइलेंस में जाता था, इतना डीप साइलेंस में जाता था। वो हमारा तुलसी भाई हमारे साथ रहते थे सेवा में, तो कभी कभी ऐसा मुझे हिला के देखता था कि ये है या चला गया करके, तो इतना डीप साइलेंस में। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा बहुत दर्द कर रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको जाएगा, फिर परेशान हो जाते हैं ना दूसरे लोग। मैंने कहा इतनी बड़ी बीमारी है तो दर्द तो होना ही है, तो सहन भी करना है करके। तो इस प्रकार से ये चलता है। एक बार मैं हॉस्पिटल में वहां एडमिट था और वही बाजू में ही रूम होता है, तो एक दिन क्या हुआ, गुलजार दादी जी पार्ला सेंटर पे आए थे, तो वहां से हॉस्पिटल में एक अकाउंट का ऑफिस था, तो उसका उद्घाटन करने आए थे। तो दादी उद्घाटन करके कोलाबस इधर नेपनसी रोड सेंटर पे चले गए। तो वहां जाने के बाद एक भाई थे हमारे ज्ञान सरोवर के आनंद भाई, उन्होंने पूछा कि दादी जी सुभाष भाई कैसे है। तो बोला सुभाष मैंने हॉस्पिटल में तो था वो। नहीं नहीं मैं तो मिली ही नहीं उसको। अच्छा उसको फोन लगा दो। तो भाई ने फोन लगा के दिया, तो दादी जी देखो इतनी बड़ी महान विभूति, दादी जी फोन पे क्या बात करते। तो दादी जी ने कहा देखो ना हमसे एक भूल हो गई। उन्होंने कहा दादी आपसे क्या भूल, आपको पता नहीं था, पता नहीं नहीं था ना, तो आप किससे कैसी गलती है। नहीं नहीं भूल तो भूल होती है ना, मैं हॉस्पिटल में आए और आपको मिले ही नहीं, तो मुझे तो ऐसा लगा कि दादी क्या बोल रही है। तो दादी जी ने फिर कहा देखो आप जल्दी से जल्दी ठीक होके मधुबन में सेवा में लग जाओ। तो दादी का यह दूसरा वरदान मुझे मिला कि, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं, जैसे कि मेरे सामने अव्यक्त बाबा है, बाबा मेरे को बोल रहा है, बाबा मुझे वरदान दे रहा है कि चलो अभी सेवा में लग जाओ ऐसे करके। तो इतनी मतलब खुशी कि दादी ने मुझे फोन किया, दादी ने मुझे फोन किया। तो इस प्रकार से ये जो अनुभव बाबा ने कराते रहे, क्योंकि बम्बई से फिर यहाँ आते हैं, फिर केम होती थी, फिर जाते थे, इस प्रकार चलता रहता था, साइकिल चलता रहता था। एक दिन क्या हुआ, मैं कमरे में बैठा था, तो कमरे में बैठा था तो और शांतिवन डायमंड हॉल में बाबा का अवतरण हो रहा था, तो हम रेडियो में सुन रहे थे, वो गीत बज रहा है, अभी बाबा भी दृष्टि दे रहा है, और जिस बाबा भी मुरली शुरू करने वाले थे, तो बाबा को मैंने जैसे कमरे में ट्रांसलेट का पिक्चर था बाबा का, तो बाबा के साथ मैंने बात किया, बाबा आप 25,000 लोगों को मुरली सुनाओगे और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, ऐसे बाबा के साथ मैं बात कर रहा हूँ और मेरे आंखों से ऐसे सारे ऐसे आंसू आने लगे, इतने आंसू आने लगे। तो मैंने तो इतने में मैंने अनुभव किया कि वो ट्रांसलेट से बाबा धीरे 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 ऐसे मेरे तरफ आए और ऐसे बाजू में बैठे, और जो बाबा जैसे मुरली चल रही ना, जैसे मुझे बाबा मुरली सुना रहे, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। तो 1.25 घंटा तक बाबा के साथ ऐसे मिलना हुआ, और उसके बाद जब मैं मुरली पूरी हुई तो मैं एकदम खड़ा हो गया, वहां से डाइनिंग में चक्कर लगाने लगा कि, तो सब लोग मुझे ज्ञान सरोवर वाले बोलते अरे यहाँ क्यों घूम रहे, तुम इतना बीमार है, तुम यहाँ क्यों घूम रहे। लेकिन मुझे तो इतना नशा है, इतना खुशी है, बाबा ने मुझे मुरली सुनाया, बाबा ने मुझे मुरली सुनाया। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि अगर कोई भी चीज को अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, तो अगर सकारात्मक रूप से उसको स्वीकार करते हैं, तो उसके बाबा कैसे कैसे अनुभव करते। मैंने एक बार भी बाबा को कभी दोष नहीं दिया कि बाबा इतनी सालों से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, तुम मेरे को ही नहीं, मेरे को ही छोड़ा नहीं, तो ऐसा कभी नहीं, नहीं ये मेरा हिसाब किताब है, मेरा हिसाब जो पार्ट है। तो इस पीरियड में मैंने देखा हमारे परिवार बहुत बड़ा है, जैसे बताया रुपेश भाई ने कि, तो उसमें कोई भाई की लड़की, बहन की लड़की, तो हमारा जो जो परहेज होता है ना, बिना मिर्ची का बिना तलाई से, तो वो लोग आते थे यहाँ सेवा, जबकि उन्हें कहा चलो कोई बात नहीं बाबा के यज्ञ में आओ सेवा करो, तो यहाँ आते थे एक, फिर मेरी सेवा करके फिर वो आर्ट गैलरी में जाते थे, वहां ज्ञान सुनाते थे। तो एक मास, दो मास, तीन मास, तीन मास के बाद फिर यहाँ कोई कन्याओं की भट्टी होती थी, तो मैं कहा अच्छा आप जाओगे भट्टी में, तो हाँ हम जाएंगे, तो भट्टी करने जाते थे, फिर ब्रह्मा कुमारी सीधा सेंटर पे। ऐसे तो इस पीरियड में 4 ब्रह्मा कुमारी बनी। तो देखो बाबा की कैसी कमाल होती है, अगर कोई चीज अगर हम पॉजिटिव उसको स्वीकार करते लेते हैं, तो कैसे बाबा हमें मदद करता है। ऐसे जब हम लोग जैसे डाइनिंग में बैठे तो सुरेश ओबेरॉय और शिवानी बहन आए थे यहाँ, तो मैंने ये अनुभव सुनाया थोड़ा थोड़ा इसे। तो शिवानी बहन ने कहा ऐसे हमको मत सुनाओ, इसको लिखो, और लिख के ज्ञान अमृत में डालो। तो मेरे को अपने आप को हंसी आए कि ये बीमारी कोई लिखने की चीज होती है। तो भी मैंने कहा चलो थोड़ा 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 ऐसा लिख के हमारे एक भाई पास मीडिया में एक भाई है गोविंद भाई, उनको दिया भाई इसको थोड़ा ठीक कर दो। तो उन्होंने थोड़ा ठीक करके ज्ञानामृत में भेजा, तो उनको इतना अच्छा लगा तो उसका फटाफट ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। जब इंग्लिश में हुआ तो अलग अलग हिंदी मराठी गुजराती सारी भाषा में ट्रांसलेशन हो, सबको पता चला। जो अभी किसको पता नहीं था सबको पता चला इसको कैंसर हुआ था अभी ठीक हो गया करके। तो बाबा की कैसी सेवा होती है। एक बार मैं जानकी दादी से मिल रहा था, हमारे माताजी भी थी सब बैठे थे, तो जानकी दादी ने कहा तेरी बीमारी है ना बहुत सेवा करने वाली। तो अंदर अंदर हंसी आ रही थी, ये बीमारी कोई सेवा करने में तो जिंदा रहे भी मुश्किल है। तो देखो दादी का वरदान कैसे होता है कि ये बीमारी तुम्हारी सेवा करेगी। तो उसके बाद मैंने देखा कि फिर हमको अलग अलग देश में जाने का मौका मिला, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, उसके बाद यूरोप, लंदन और जर्मनी, फिर उसके बाद 2017 में अमेरिका, पूरा ढाई मास वहां थे। तो जहां भी जाते थे ना, जहां भी जाते थे सब लोग बोलते थे नहीं आप ज्ञान नहीं सुनाओ, तो क्या सुनाओ, वो आपका कैंसर वाला अनुभव सुनाओ। तो जिधर भी जाते थे हमें को कुछ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सीधा ये अनुभव सुनाओ क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें है। तो बोले आपका अनुभव सुनाओ वो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बार हम वैंकूवर में अनुभव सुनाया, तो उसके बाद मैंने देखा एक माता जी आई रोते रोते रोते, बोलती है आपको पता है। बोला क्या, आपको किसने बुलाया इधर। मैंने कहा मैं आया हूं। नहीं मैंने बुलाया। बोला कैसे। बोला मैंने आपका पीस ऑफ माइंड में अनुभव सुना, और वो अनुभव सुनने के बाद मैं बाबा को रोज अमृत वेला बोलती हूँ, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है, बाबा ये भाई से मिल। आज बाबा ने आपको देखो मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो देखो बाबा कैसे माताओं के कैसी इच्छा पूरी करता है, माताओं को कितना मतलब मन रखता है। कि एक माता अभी जबकि मेरा कनाडा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ऐसे बनते बनते बन गया कि भाई अमेरिका जा रहे हो तो कनाडा भी होके आ जाओ करके। तो कैसे बाबा मदद करता है हर परिस्थिति में। तो मैंने ये देखा और मैंने लिटरेचर पढ़ा, ये पढ़ा सब, जैसे एक पता चल गया कि हमें इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से कभी भी हमें कोई भी परिस्थिति आए तो इसको एक तो फैलाव नहीं इधर उधर, जो हम आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना निकला है, आपके सिर में भी दर्द हो ना, एक किसी को बताया ना सारे हजार लोगों तो कह रहे इसके सिर में दर्द, इसके सिर में दर्द। उससे क्या होता है कि निगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है, निगेटिव एनर्जी से फिर हमको बीमारी से उठना, उसके ऊपर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पॉजिटिवली सोच के हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मुझे याद है हमारे जो शिवाजी महाराज होके गए, उनकी पत्नी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो जब वो वैद्य महाराज वहां गए तो उन्होंने कहा कि भाई वैद्य जी क्या है इनका। तो वैद्य ने शिवाजी महाराज को बोला कि ज्यादा टाइम नहीं, एक डेढ़ मास की मेहमान है आपके पास। तो शिवाजी महाराज ने उनको चुप कर दिया, बोला इधर आओ। फिर उनको अलग बोला कि आप बिल्कुल ये बात नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है। नहीं ये तो छोटी सी बीमारी, इससे तो बड़ी बड़ी बीमारी मैंने ठीक किया, ये ठीक हो जाएगी, ये तो डेढ़ मास में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करके फिर वो बोल दिया उसके वाइफ को। जैसे ये बोल दिया ना तो एकदम खड़ी हो गई, अच्छा मैं ठीक होने वाली है ठीक। तो एकदम फिर डेढ़ मास के बाद उसने शरीर छोड़ा, लेकिन डेढ़ मास तक तो खुश रहे ना, वो मस्त रहे थे। तो शिवाजी महाराज ने वो वैद्य को बोला कि अगर आप अभी बोलते तो अभी वो मर ही जाती थी यार वो एकदम, लेकिन आपने ये बोला तो डेढ़ मास तक हंसी खुशी सब रहे। तो कोई भी परिस्थिति जीवन में बड़ी की बड़ी परिस्थिति भी आए तो हमें कभी दुखी नहीं होना है, उससे हमें कभी कमजोर नहीं बनना है, अपने आप को हिम्मत रखना है। और जब तक अंतिम श्वास तक हमें बाबा को याद करते करते, अगर शरीर तो हमें छोड़ना ही ना, वही संकल्प मुझे आया कि ऐसे थोड़ी कि यहां से कोई यहां रहने के लिए आया है, आगे पीछे आज नहीं कल जाना ही है, तो जाने तक हमें अच्छे खुशी से जीना है, अच्छे से जीना है, ये हमें नोट करना है। और दूसरी बात मैंने देखा, हमारी मम्मी उस समय 95 ईयर की थी, तो माता का कितना प्यार होता है, तो माता जी यहां सेवा में आती थी, तो कमरे में आती थी, कमरे में आके बोलती नहीं आपको मैं मसाज करूंगी। तो मैंने कहा, क्योंकि जब कीमोथेरेपी होती है ना तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि नसें सारी सुकड़ जाती है, इतना दर्द होता है, तो वो मानती नहीं, नहीं मैं करूंगी। तो पूरा शरीर का जैसे बच्चे को मालिश करते ना ऐसे, तो उससे क्या होता है, वो जो सारी नसें है ना ऐसे खुल जाती है, उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, वो मैंने अनुभव किया। ऐसे जब हम जब थोड़ा ठीक ठाक हो गए, तो हम नीचे शांतिवन गए थे गुलजार दादी को मिलने के लिए, तो गुलजार दादी के पास बैठे थे ऐसे बातें करते करते, तो दादी जी ने कहा अच्छा ऊपर विंग के प्रोग्राम चल रहे, अच्छा बारिश हो रही, से बातें करे, तो दादी जी ने कहा अभी रुको दो मिनट मैं आती हूँ। तो मेरे साथ और भी एक भाई थे, तो दादी गई होगी कुछ काम से, तो दादी जब वापिस आई तो दादी जी के हाथ में दो प्लेट जिसमें नमकीन मीठा ये वो, तो जैसे दादी आए ना तो एकदम हम खड़े हो गए, दादी ये क्या कर रहे हो? तो दादी जी ने कहा देखो मैं जब ज्ञान सरोवर में आती हूँ तो आप लोग कितना खातिर करते हो, मैं भी करूंगी। तो हमें ऐसा लगा कि जिस महान आत्मा को, महान विभूति को देखने के लिए लोग तरसते है, और हम दादी जी हमें इतना ऑफर कर रही है, तो हम तो कितनी छोटी सी मतलब सेवा की, भोजन खिलाने की सेवा। शुरू शुरू में जब मधुबन में आए थे, मधुबन में मुझे याद है कि जब प्रकाशमणि दादी जी वहां आंगन में बैठे थे, मैं और सूरज भाई यहां से गए, आंगन से गुजर रहे थे, तो दादी जी ने बोला सूर्य इधर आओ ऐसे बोल, तो गए, तो दादी जी ने कहा देखो दादी जी को एक चिंता लगी। तो बोला क्या चिंता लगी? कि देखो इतना बड़ा हाथी बना रहे हैं, इतना बड़ा हाथी मतलब ज्ञान सरोवर के लिए बोला, इतना बड़ा हाथी बन रहा है लेकिन इसको संभालेगा कौन? तो सूरज भाई ने बाबा बैठा है ना, तो ऐसे बोल दिया जैसे बोलते है सूरज भाई। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम जाएगा, डायरेक्ट दादी ने तुम जाएगा? हाँ दादी आप बोलेंगे तो हम चले जाएंगे ज्ञान सरोवर। तो दादी जी ने तुरंत बोला अच्छा ये साथ है ना, इसको भी सुभाष को भी ले जाना ज्ञान सरोवर। तो जैसे ही दादी जी ने बोला मेरे तो एकदम पसीना आ गया कि मैं तो ज्ञान सरोवर कैसे जाऊंगा, मैं तो मधुबन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मधुबन में जो प्यार मिलता है, चार धाम की यात्रा है, फिर ये जो हिस्ट्री हॉल में योग करते थे और दादी जी पीछे आके बैठती थी, फिर हम लोग ऐसे दृष्टि लेते थे, तो मतलब मैंने ऐसे फिर नकेली का चक्कर लगाते थे बाबा की पहाड़ी पे, सारे दृश्य सामने आ गए, तो मैं तो नहीं क्या आंसर हो जाऊंगा कि धूल मिट्टी जंगल है वहां नहीं जाएंगे ऐसे करके। तो लेकिन ना तो नहीं कह सकते दादी जी को, दादी जी को हाँ दादी बोल दिया, फिर आए इधर। तो दो साल तो मधुबन छोड़ा नहीं, रोज जाते थे आते थे, लेकिन जब यहाँ देखा इतनी सेवा बढ़ गई, इतनी सेवा बढ़ गई, तो बाद में मैंने कहा नहीं अभी यहाँ। तो देखो खाना खिलाते, फिर हम दादियां जो भी आती थी प्रोग्राम के लिए, तो हमारी जो दादियां होती थी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमन दादी, सारी हमारे पास 5 नंबर में खाना खाने आते थे। जब विदेशी सीजन होता तो पूरा सीजन जानकी दादी खाना खाने उधर आते थे। तो हमें मतलब एक चांस मिलता गया, देखो हाजी करने से कितनी बड़ी प्राप्ति होती। तो दादियों के साथ भी हम तो एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन हाजी हाजी करते करते आज हमने देखा जितने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जितने भी बड़े वीआईपी आते, चाहे प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, जो उनको भोजन की व्यवस्था करने का सौभाग्य मिलता है, दादियों को खिलाने का। तो बीच में तो ऐसा संकल्प चलाता है क्या खाना खिलाना है रोज रोज, ऐसे जब ज्ञान स्वरूप से आए, वहां मधुबन से आए थे, लेकिन जब स्वीकार किया नहीं मुझे अभी यही सेवा करनी, तो कैसे बाबा ने हमको उसको मदद किया और इस प्रकार आगे बढ़ाते बढ़ाते। फिर हमारे कई जो दोस्त है बहुत बड़े बड़े धनी बने, बड़े बड़े, उनको पूछते अच्छा ओम शांति कैसे हो, ठीक है। फिर बोला अच्छा कौन से देश में, अरे हम तो दुबई गए थे इतना ही बहुत है। हमने कहा हम तो 17 देशों में घूम के आए। अरे कैसे गए? मैंने कहा ये बाबा की कमाल है। तो बाबा कैसे हम बच्चों को मदद करता है पल पल, और कोई भी चीज को हमें इसको पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव लेने से हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो 8 बज चुका है और आपको लास्ट में जो हम योग करेंगे तो योग में आपको ये अनुभव करना है कि बाबा हमारे ऊपर है और बाबा की छत्र छाया, बाबा मेरे पर वायलेट, ब्लू वायलेट की लाइट दे रहा है और पूरा शरीर ब्लू वायलेट हो रहा है, और ब्लू वायलेट होके शरीर के अंदर कोई भी जर्म्स है वो भस्म हो रहे हैं, कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है। ये अभ्यास करना है। और दूसरा अभ्यास ये करना है, यहां से जब उठेंगे, अभी तो 2 दिन में तो आप फरिश्ते तो बन गए हैं, तो एकदम आज का जो भोजन करना है एकदम साइलेंस में करना है। और दूसरी बात है कि आप आराम से जाइए, क्योंकि भोजन आपके लिए बना है, कोई जल्दी जाने की जरूरत नहीं। आप अपने रूम में जा सकते हैं थोड़ा टहलते हुए आराम से, ताकि वहां भोजन में भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रुप जो है थोड़ा बड़ा है। तो आराम से कोई बात नहीं करेंगे, एकदम साइलेंस में और योग युक्त बन के भोजन करना है। देखो उसका कितनी शक्ति मिलती है। मुझे याद है जगदीश भाई जी हमारे थे, वो भोजन करते समय कभी बात नहीं करते थे। भोजन स्वीकार लिया, बाबा को भोग लगाया, ना दूसरी चीज लेते थे ना वो किसी से बात करते थे, एकदम बाबा की याद में साइलेंस में एक एक। और जब भोजन पूरा करते थे तो जो हम लोग खाना खिलाते थे ना, थैंक यू करके, मतलब इतना रिस्पेक्ट रखते थे क्योंकि ब्रह्मा भोजन है ये करके। तो इस प्रकार से ब्रह्मा भोजन का रिस्पेक्ट भी करना है, वेस्ट भी नहीं करना है, लेकिन एकदम साइलेंस में धीरे धीरे जाके भोजन भी करना है।